ಗುರು ಶಾಂತಿ. ಸಮಯ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹುಯೆ ಬಾಬಾ ಸೇವಾಓ ಕೆ ವಿಧಿ ಮೇ ಭಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸೇವಾಓ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಯ ಅನುಸಾರ ಬದಲ್ತಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅಭಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮೇ ದೇಖೆ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೋ ಭಿ ತೀವ್ರ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಸೇವಾ ಕಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಿ ಹಮಾರಿ ತೀವ್ರ ಹೋ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭಿ ಸಮಯ ವೋ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಜೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಸಂಕಲ್ಪ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾ ಕಾ ವಕ್ತ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಬಾಬಾ ನೆ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕೋ ಚೇಂಜ್ ಕರೆ. ಪಹಲೆ ಸೇವಾಯೆ ಹಮ ಜಬ್ ಆಯೆ ತಬಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾಯೆ ಹೋತಿ ಥಿ. ಧೀರೆ ಧೀರೆ ರೂಪ ಬದಲಾ. ಮೇಲೆ ಹೋನೆ ಲಗೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಶಿಬಿರೆ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಅಭಿ ಟಾಕ್ ಶೋ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ. ತು ರೂಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾಯೆ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಅಬ್ ಸಾಧನ್ ಭಿ ವೋ ಬನ್ತೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ, ಜೋ ಪಿಪಿಟಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ವಿಡಿಯೋ ದ್ವಾರಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಕೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬನ್ ರಹಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಸ್ವರೂಪ ಹೋತೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ. ಔರ್ ಬಾಬಾ ನೆ ಹಮ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಯೇ ತೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಹೈ ಕಿ ಅಬ್ ಸಬ್ ಸುನ್ ಸುನ್ ಕೆ ಥಕೆ ಹುಯೆ ಹೈ, ಸುನಾನೆ ವಾಲೆ ಬಹುತ್ ಹೈ, ಅಭಿ ಸಬ್ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ಅಬ್ ಐಸೆ ಸಮಯ ಪರ್ ಯೇ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾ ಕರೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೃತ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಔರ್ ವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಸೇವಾ ಬಹುತ್ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಸೇ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಬಾಬಾ ನೆ ಬೋಲಿ ಮೇ ಕಹಾ ರಾಕೆಟ್ ಕೆ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇವಾಯೆ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಔರ್ ವೃತ್ತಿ ಸೇ ದೃಷ್ಟಿ ಔರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕಹತೆ ನೆ, ಜೈಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ವೈಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಔರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಆಧಾರ ಹಮಾರಿ ಆಂತರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೈಸಿ ಹೋಗಿ ವೈಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಮಾರಿ ದೇಖೇಗಿ. ಬೀಚ್ ಮೇ ಮೈನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾ ಏಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸುನ್ ರಹೆ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ್ ಕಾಮನ್ ಚೀಜ್ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಆಧಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾನಿ ಕಾ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ, ತೋ ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇ ದೇಖಾ ಕಿ ಭೈ ಆಧಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾನಿ ಸೇ ಭರಾ ಹೈ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಕಹತಾ ಹೈ ಆಧಾ ಖಾಲಿ ಹೈ. ಜಬ್ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಕಿ ಆಧಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾನಿ ಸೇ ಭರಾ ಹೈ ಔರ್ ಆಧಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೇ ವೋ ಹವಾ ಸೇ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಏಕ್ ನೆ ಖಾಲಿ ದೇಖಾ ಔರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಪಾನಿ ಔರ್ ಹವಾ ಸೇ ಭರಾ ಹುವಾ ಪೂರಾ ದೇಖಾ. ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ವೃತ್ತಿ ಕೆ ಕಾರಣ ವೋ ದೃಷ್ಟಿ ದೇಖ ರಹಿ ಹೈ. ವೈಸೆ ಹಮಾರಿ ವೃತ್ತಿ ಭಿ ಸೇ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಬದಲ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಪಹಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೆ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಕೋ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೆ ಖುದ್ ಅಪ್ನಿ ವೃತ್ತಿ ಕೋ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ನಾ ಹೋಗಾ, ಬದಲ್ನಾ ಹೋಗಾ ವೃತ್ತಿ ಕೋ. ಔರ್ ವೃತ್ತಿ ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಯಿ ಭಿ ಚೀಜ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಚಾಹಿಯೆ ತಬ್ ವಹಾ ಮೆಹನತ್ ಹೋತಿ ಹೈ और शक्ति की जरूरत होती है। छोटे छोटे कार्य भी देखें, हम कार चला रहे हैं और फिर कहते हैं अभी लेफ्ट में जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेयरिंग के ऊपर बल लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। रोड सीधा है, गाड़ी सीधी चल रही है, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन चेंज तो वहां मेहनत है। हमारी लाइफ में भी कहां भी कुछ चेंज करने की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, तो वहां मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है और वहां शक्ति की जरूरत होती है। तो हमें अपनी वृत्ति को भी बदलना है। एक तो पावर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा कहीं भी परिवर्तन होता है तो सामना भी करना पड़ता है। जैसे बाबा अपनी लौकिक लाइफ ब्रह्मा बाबा बिता रहे थे और उसमें जो साक्षात्कार हुआ और उनकी लाइफ में चेंज आया, तो समाज का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। परिवर्तन जल्दी से स्वीकार नहीं होता है, खुद को भी औरों को भी, कोई भी चेंज नहीं। बैठने का स्थान बदलता है तो भी एक्सेप्ट करने को, कहती रोज मैं तो यहां ही बैठती हूं, जहां रोज सोते हैं वहां से चेंज हो वो एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ होती है, बदलाव है। तो बाबा को भी समाज का सामना करना पड़ा क्योंकि परिवर्तन हुआ। हम भी अपनी वृत्ति को बदलेंगे तो हमें भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि द्वापर युग से लेकर के आसुरी वृत्तियां इस इंद्रियों से कार्य करवाती रही है, उसके अभ्यासी हो गए हैं हम, आदती हो गए हैं हम, अब उसको चेंज करना है उस वृत्ति को। और अब वृत्ति को शुभ भावना शुभ कामना में चेंज करने के लिए वो आसुरी वृत्ति विरोध करेगी, रोक लगाएगी। इसलिए कई बार मुरली में भी बाबा कहते, बच्चे कहते हैं कि बाबा जरा माया को कह दो ना हमें तंग ना करे, क्रोध को कह दो ना आए, बाबा जरा इनको समझा दो ना, क्योंकि परेशान करती है ना वो। और बाबा कहते हैं कि देखो यहां से बाहर निकलोगे ना माया खड़ी है, हा? वो प्रवेश करने के द्वार ढूंढ रही है। तो बाबा ने कव्यक्त मुरली में कहा है, जब बच्चों ने कहा ना जरा माया को कह दो, तो बाबा कहते हैं उसको भगाने का पुरुषार्थ भी मैं ही करूं और प्रारब्ध आपको भोगना है। मेहनत बाबा करे और प्रारब्ध बच्चों को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी वृत्ति को परिवर्तन करने की। और इसलिए बाबा कई बार कहते मुरली में कि कई बच्चों से ये परिवर्तन की मेहनत ये पहुंचती नहीं है, मेहनत होती नहीं है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, सामना तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और ये वृत्ति 63 जन्म से लेकर के चलती आ रही है, रावण का राज्य, और वो वृत्तियां कब से काम कर रही है, और उसको अभी हमें चेंज करना है। और देखा जाता है कि कोई भी चेंज लाने के लिए हम अपने आप को छोड़े दूसरों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए कोई भी चीज का बदलाव लाना हो तो हम कितने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, चाहे कप की फैक्ट्री हो, आपके अंदर में कुछ लोग काम करने वाले हो, नौकर हो, या परिवार के सदस्य हो, बच्चे हो, तो उनमें चेंज लाने के लिए हम कितने स्ट्रीक होते हैं। हम अपने आप से पूछे कि हम अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए अपने पर इतने स्ट्रीक होते हैं, दूसरों के परिवर्तन के लिए जितना स्ट्रीक हो जाते हैं हम, उतना अपने आप पर होते हैं बदलाव लाने के लिए स्ट्रीक। तो सबसे पहले मुझे अपनी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए मेरे पर मेरा फोकस हो, मेरी हर कर्म इंद्रियां, मेरी हर वृत्ति पर मेरा अटेंशन हो, और जब अटेंशन रहे उस पर स्ट्रीक हो जाए तब बदलाव आता है। हम सब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिंग में सेवा करती हूं तो एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है कि पहले कार चलाते तो बेल्ट नहीं लगाते थे, स्कूटर चलाते थे तो हेलमेट बॉम्बे में नहीं पहनते थे, लेकिन अभी दंड इतना भारी हो गया कि इतने हजार रुपये देने पड़ेंगे बेल्ट नहीं लगाएंगे तो, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो। अब ये सजा ने क्या किया है, सबको सावधान कर दिया है, और अभी उसके कारण कार में बैठते ही याद आता है कि पहले बेल्ट लगाओ, है ना? स्ट्रीक ना, पुलिस स्ट्रीक हो गई तो क्या हुआ, बदलाव आया। हमें भी अपने आप पर इतना स्ट्रीक होना पड़ेगा, तब हमारे में भी क्या होगा, बदलाव आएगा। मुझे याद है कि दादिया अनुभव सुनाती है कि ब्रह्मा बाबा कहते थे अमृत वेले उठते हो और नींद आती है, कई बार नींद आती है, सुस्ती आती है, थके हो, लेट सोए हो, कई रीजन होते हैं, रात्रि को नींद नहीं आई, फिर सुबह अमृत वेले उठ के नियम के हिसाब से तो बैठे, लेकिन अभी नींद पूरी नहीं हुई थी और अभी बैठे हैं तो फिर नींद आती है, जुट के आते हैं। तो बाबा कहते थे कि राई का तेल लगा दो आंखों में, जलेगा ना, तो फिर क्या नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, है ना? भाई चोटी को ऊपर बांध दो, झुटकाएगा ना तो बाल खींचेगा, तो नींद क्या होगी, भाग जाएगी। भाव ये है कि कोई भी उसका रिटर्न में सजा है, दंड है, तो वहां क्या होते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो हमें भी वृत्ति के परिवर्तन के लिए अपने आप पर स्ट्रिक होना पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा, और शक्तियों को यूज भी करना होगा, तब ही परिवर्तन कर सकेंगे। अब बात ये है कि वृत्ति को चेंज करना है हमें, क्योंकि उससे वायुमंडल चेंज होता है। आप सब सेंटर पर आते हो, घर में भी रहते हो और रोज सेवा स्थान पर बाबा के घर में भी सब आते हो, तो घर के वायुमंडल में और बाबा के घर में आते हो उस वायुमंडल में फर्क होता है, जो समझते हैं फर्क होता है हाथ उठाओ। देखो सब समझते हैं कि चेंज होता है, क्या कारण है, कारण ये है कि वहां रहने वाले हर दम उनके मन में एक तो एक्टिविटी में ज्ञान योग और सेवा उस स्थान पर लगातार वो चीजें चलती रहती है, वहां कैसे किन आत्माओं की सेवा की जाए वो चलते फिरते भी सोच वो चलता है, प्लानिंग चलती रहती है, सेवा भाव है, आने वालों की सेवा, दूसरों को बाबा के घर में कदम रखे उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो यही सेवा की वृत्ति अंदर है, और इसीलिए वहां का वायुमंडल क्या होता है, अलग। और इसलिए नए जब सेवा के स्थान पर आते हैं तो अंदर एंटर होने से ही कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में बहुत शांति है, यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, यहाँ हमको अच्छा लगता है। कई बार वीआईपी आए हुए होते हैं, कहते हैं कि हम इतने मिनट के लिए आधे घंटे के लिए आएंगे, आने के बाद फिर एक डेढ़ घंटा बैठ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं कि अब जल्दी जाऊं। क्यों? वहां के वायुमंडल का आकर्षण, उस वायुमंडल में जो शांति मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो मिल रहे हैं, तो वो आत्मा को अच्छा लगता है। एक बारी एक फिल्म डायरेक्टर को एक भाई लेकर के आए थे और उन्हें प्रॉब्लम था कि 6 मास हो गए हैं, उनको नींद नहीं आती है, नींद का बहुत प्रॉब्लम है। तो किसी ने कहा कि मेडिटेशन सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसके पास जाओ, जो भाई उनको लेके आया था। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि वहां पर जाओ, क्योंकि इनकी दवाइयां भी असर नहीं करती कई बार। तो वहां पर आए थे और फिर उनके साथ ज्ञान की चर्चा चल रही थी, तो सुनते 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 बाबा की ज्ञान की बातें सुनते सुनते वहां ही उनको क्या हुआ, नींद आ गई। तो उसके साथी भाई था, मैंने कहा आप कहते हो कि उनको नींद नहीं आती, अभी मैं बोल रही हूं और वो तो सो गए हैं। तो बाबा के घर का जो वातावरण और वाइब्रेशन वायुमंडल उनके मन को रिलैक्स कर देता है, और मन रिलैक्स हो जाता है तो अच्छी सी नींद आ जाती है। आप सबका भी अनुभव तो है ना कि योग में अच्छी नींद आती है ना है? योग में बैठते हैं तो अच्छी नींद आ जाती है, ऐसे कार्य में लगे रहो कहते नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, योग में बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी। मन रिलैक्स होता है मेडिटेशन में, योग में, तो उससे क्या होता, वो वायुमंडल पकड़ लेता। इसलिए हमारी वृत्ति कैसी हो, बाबा ने कहा है कि आपकी पॉजिटिव वृत्ति हो, शुभ भावना शुभ कामना वाली वृत्ति हो। और हमें देखना है कि दिन भर में जितने भी व्यक्ति हमारे सामने आए, मेरा पहला सोच या मेरा एक संकल्प उनके प्रति कोई शुभ भावना का उठा है, एक नियम बना ले। जैसे बाप कहते एक दूसरे से मिलते हो आत्मिक भाव से मिलो, आत्मा से मिल रहे हैं, ऐसे ही शुभ भावना से शुभ कामना से मिलो। देखा उनके प्रति मेरे मन में कोई न कोई शुभ विचार, अच्छा सोच, बेस्ट सोच उस आत्मा के प्रति मेरे मन में आता है। एक कुछ दिन करने से हमारी पॉजिटिव देखने की वृत्ति बन जाएगी। अभी मैं आज का ही अपना एक अनुभव सुनाऊं कि सरस्वती भवन में जहाँ रतनमोहन दादी रहती है वहां रहते हैं, तो हम उस गाड़ी में आते हैं तो क्लास के हिसाब से यहाँ भाई आते हैं, इस साइड से आते हैं। तो सुबह में क्लास में जब आना था तब उस भाई को कहा कि नहीं यहाँ ले जाओ। अब बाद में मुझे याद आया कि मुझे तो मुरली क्लास में जाना है तो इस साइड उतरना है। तो मैंने ये देखा कि तीन दिन लगातार जब इस साइड से मैं आई तो देखो ये तीन दिन की आदत ने आज भी मुझे क्या किया, यहां आने को मजबूर किया। एक थोड़े दिन हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी, एक थोड़े समय का ये पुरुषार्थ है बदलाव लाने के लिए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिव देखने की मेरी दृष्टि बन जाए, मेरी वृत्ति बन जाए, मेरी वृत्ति अच्छाइयों की खोज करे। जिस व्यक्ति को जिसकी खोज होती है उसको उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, भले आजू बाजू में पड़ा भी हो। बाबा मिसाल भी देते हैं कि हंस को क्या दिखाई देता है, अभी उसका मतलब दूसरा कुछ है नहीं क्या? आजू बाजू में जहां मोती है वहां और चीजें भी हैं, लेकिन हंस की वृत्ति क्या है? मोती की खोज है, उसको चुगने की है, इसीलिए उसको वही दिखाई देता है। मेरी वृत्ति अच्छाइयों को ढूंढने वाली बन जाए तो हर जगह पर मुझे क्या होगा, अच्छाई दिखाई देने लगेगी, वो वृत्ति बन जाए, पॉजिटिव वृत्ति। और बाबा ने कहा कि आपकी वृत्ति पॉजिटिव बन जाएगी तो नेगेटिव हो उसको भी आप पॉजिटिव में परिवर्तन। किसी की नेगेटिव वृत्ति है दोष देखने की, अवगुण देखने की, कमी देखने की, कोई भी प्रकार की नेगेटिव, ईर्ष्या, घृणा, अपने प्रास हो, निंदा करता, ऐसी नेगेटिव चीज उसकी हो, लेकिन हमारी पॉजिटिव वृत्ति उस आत्मा की नेगेटिव वृत्ति को भी पॉजिटिव बनाएगी। हाँ, उसमें धीरज रखनी पड़ेगी और सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो नहीं बदल जाएगा वो अपनी नेगेटिव वृत्ति का अप्रोच करता रहेगा, हम अपनी पॉजिटिव वृत्ति उनके प्रति रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, एक दिन शर्मा जाएगा और उनकी नेगेटिव वृत्ति पॉजिटिव में क्या होगी, बदल जाएगी। अच्छाई का प्रभाव भी तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाबा कहती हैं कि आपकी पॉजिटिव वृत्ति में वो पावर आपके शुद्ध संकल्पों में होगी कि जो आपसे तो माया दूर रहेगी ही रहेगी, लेकिन औरों की माया को भगाने के लिए भी आप निमित्त बन जाएंगे। और दादियों के, साकार बाबा के बहुत सारे अनुभव है, हम बहने भी अनुभव करते हैं, सेंटर पर आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्ति से आते हैं, अलग अलग भावों को, गलत भावों से भी आते हैं। चलो बहने हैं, जरा उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करने के न, समझने की वृत्ति से नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स करने की वृत्ति से आते हैं, अलग अलग भाव लेकर के। चलो ये ज्ञान की ये बातें कहते हैं, उस्काने की कोशिश करेंगे, अलग बातें बोल करके आपका दिमाग गर्म करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये कहते हैं उतना ये शीतल है, किनको गुस्सा आ जाता है जरा टेस्ट करो, वो वृत्ति से भी आएंगे, अलग अलग वृत्ति से आते हैं आने वाले। लेकिन उस समय पर हमारी रूहानियत, आत्मिक दृष्टि, कल्याण की भावना, प्योर वाइब्रेशन, वह उस आत्मा की उन भावों को चेंज कर देता है। फिर खुद ही बताते हैं, जब वहां से कुछ प्राप्ति बाबा के घर से होने लगती है, वो रूहानी प्यार मिलने लगता है, वो प्योर प्यार मिलने लगता है, उनके अंदर भी प्योरिटी के परसेंटेज आने लगते हैं, तो बताते हैं कि हम तो पहले इस भाव से आए थे लेकिन अब परिवर्तन हो गया। हमारा पॉजिटिव अप्रोच कितना है तो उनकी वृत्ति को, उनके सोच को, उनकी गलत भावनाओं को ये वृत्ति बदल देगी। और जहां प्योर वृत्ति है, वृत्ति में बिल्कुल शुद्ध क्लीन इनोसेंट वृत्ति है, जहां पर वहां पर क्या होता, व्यक्ति जो सामने आता है उनको अपने दोष का, उसमें रही हुई गलतियों का दर्शन हो जाता है। जैसे आईने के सामने जाए ना, जैसे क्लीन पानी हो, साफ सुथरा, तो उसके भीतर क्या है वो दिखाई देता है। ऐसी वृत्ति में पवित्रता है तो व्यक्ति को सामने जो आया उसको अपनी कमी का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार महसूसता उन आत्मा को हो जाती है और वो झुक जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव है, क्योंकि जब ओम मंडली की शुरुआत हुई तो विरोध करने वाले बहुत थे और उनको था कि ये दादा लेखराज है जिनके कारण ही सब लोग वहां जाते, वो न रहे तो ये सब कुछ उनका बंद हो जाएगा, और इसीलिए ऐसी प्लानिंग कर रही कि भाई वो रहे नहीं, और उस वृत्ति से बाबा को मिलने के लिए आया। लेकिन बाबा के सामने जब आया, बैठा, और बाबा की वो कल्याणकारी भावना, वो रूहानी प्यार, आओ बच्चे, बाबा ने प्यार से, वो कोई वृत्ति नहीं रखी कि ये इस भाव से आया हुआ है, और बाबा ने रहम की, कल्याण की वृत्ति रखी, भाव रखे, तो उनकी भावना भी क्या हुई, बदल तो गया लेकिन झुक भी गया कि माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो हमारी पवित्र वृत्ति दूसरे की वृत्ति को भी पवित्र बनाने में मदद करती है, और ऐसी प्योर पवित्र वृत्ति भाव वाली आत्मा वो जहां उपस्थित हो उसके इर्द गिर्द पूरा एटमोस्फियर वातावरण वो प्योर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ऐसा वायुमंडल जहां पर हो उसमें कोई आत्मा प्रवेश करे, वो वायुमंडल उस आत्मा को घेर लेता है और उसको बदल देता है। नहीं, छोटेपन में खेलते थे ना, एक दौड़, पांच सात दौड़ रहे, एक व्यक्ति ने दौड़ के उसको पकड़ा, फिर वो उसका साथी बन गया, फिर वो दो मिल करके सबको पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ा गया, ऐसा पूरा घेराव डाल देते हैं, फिर एक को बचना मुश्किल होता है, बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया। तो इस प्रकार से हम ब्राह्मणों की पवित्र वृत्ति, बाबा कई बार कहते हैं सेवा के लिए ना घेराव डालो, दादियां कई बार कहती हैं चारों तरफ एक साथ एक डेट पर प्रोग्राम हो, चारों तरफ एक प्रकार का वायुमंडल तैयार होता है। जैसे नहीं अगरबत्ती जलाते हैं, भक्ति में भी देखें, भक्त वायुमंडल को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगरबत्ती धूप दीप जलाते हैं, भजन कीर्तन आरती मंत्र, चारों तरफ एक सर के मंत्र उच्चारण हो रहे हो तो वहां का माहौल कैसा हो जाता है? भक्ति भाव भावनात्मक वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। एक बार हरिद्वार में गए थे सेवा के लिए तो सुबह सुबह हर जगह पर आरती चल रही है, घंट बज रहे हैं, है ना? तो टोटल एटमोस्फियर एक अलग बन जाता है। इंटरनेशनल योग क्या है? एक ही समय पर, एक डेट पर और एक ही टाइम पर सारे विश्व के बाबा के बच्चे मेडिटेशन करते हैं। यहां भी देखा अपने जान की दादी आती है, तीन बार ओम शांति बुलाती और सारे मिलकर के एक साथ बोलते ओम शांति, तो कैसा गुंजन होता है, वातावरण अलग तक लगता है कि नहीं लगता है, चेंज होता है ना? दादी की उपस्थिति वायुमंडल को क्या कर देती है, एक बदलाव ले, उमंग उत्साह खुशी। बाबा ने एक मूली में कहा था कि दादियों के जहां जहां कदम पड़े वहां पर ब्राह्मणों में उमंग उत्साह खुशी के नगाड़े बजने लगते हैं, एक अलग स्पिरिट। दादी जहां पहुंचने वाली हो वहां के भाई बहनों में एक अलग स्पिरिट आ जाती है, अलग ताकत आ जाती है। वो आत्मा के जाने के पूर्व भी वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं और जब वो उपस्थित होते हैं तो माहौल कुछ अलग बन जाता है। तो ये वायुमंडल को तैयार करने की सेवा, इसलिए बाबा ने कहा था सेवा के स्थानों को शांति का कुंड बनाओ। इतनी साइलेंस वहां पर हो कि आत्मा उस वायुमंडल में प्रवेश करे और कितना भी परेशान हो, बेचैन हो, न बुद्धि भटकती हो, लेकिन देखा है कि वहां आके बैठ जाता है ना तो उसको होता है हाश। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों का योग भी नहीं लगता, मुरली में भी ध्यान नहीं लगता ना, तो मैंने पूछा कि फिर आप यहाँ आते हो, तो कहते हैं कि नहीं यहाँ आकर के मैं बैठता हूं ना तो मेरा मन शांत हो जाता है, यहां मुझे बैठने दो। तो ये ब्राह्मण जो योग करते हैं एक सेवा के लिए स्थान तैयार करते हैं, वायुमंडल तैयार कर देते हैं। और आप देखिए कि चाहे आपके घर में भी कोई व्यक्ति आता हो, देखा है कि ज्ञानियों के घर में जब जाते हैं और आपके मित्र संबंधी उनके घर में भी आपके संबंधी जाते होंगे, कई लोग सुनाते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना तो वो कहते हैं कि आपका घर का वायुमंडल और जगह से अंतर है, अच्छा है, शांत है। तो आपके घर के वायुमंडल में भी आपकी वृत्ति से, आपकी भावनाओं से वहां का वायुमंडल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि एक स्थान पर बैठ करके भी आप दूर दूर की आत्माओं के पास अपनी वृत्ति से वो वाइब्रेशन पहुंचा सकते हो, फील होता है। यहां उनको याद कर रहे होते हैं और उनका कॉल आ जाता है, कहेंगे मैं इसी काम से कॉल करने वाली थी, वो कहेंगे मैंने भी इसी काम से आपको याद किया और फोन किया, आपका आए उसके पहले उनका फोन आ गया। वाइब्रेशन, प्रकंपन, जैसे अगरबत्ती चारों तरफ जला दो तो उसकी खुशबू कहाँ 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 तक वो सुगंध पहुंचती है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के बाप के समान गुण, कर्तव्य और आपकी श्रेष्ठ वृत्ति के शुद्ध संकल्प के ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन ये इस दुनिया में जो दुख अशांति और परेशानी है ये आपकी बेहद की वैराग की वृत्ति ऐसे एटमोस्फियर में भी सुख की और शांति की अनुभूति कराएगी। मन की परेशानियों से उस आत्मा को उस वायुमंडल में आने से मुक्ति मिलेगी। बाबा ने कहा कि आपकी बेहद की वैराग की जो वृत्ति है, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि साधन सेवा के भले हों लेकिन साधन के वशीभूत नहीं। सेवा के लिए यूज करो लेकिन अंदर से बेहद की वैराग्य की वृत्ति रहे। अर्थात बाबा ने कहा चारों ओर तपस्या का साधना का वायुमंडल बनाओ। जैसे एक व्यक्ति के कोई गुण आपको नजर आए, अच्छाई आपको पसंद आई, अब जहां तहां उसकी अच्छाई का वर्णन करो तो उस आत्मा के लिए कौन सा वायुमंडल तैयार कर रहे हो? एक उनकी कला या उनके गुण का एक एटमोस्फियर आप क्रिएट कर रहे हो, चारों तरफ फैलाते हैं ना। कहते हैं ये व्यक्ति ने मेरी ऐसी बात करके मुझे तो सारे समाज में बदनाम कर डाला, मेरे लिए एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट कर दिया। अच्छा भी किया जा सकता है। तो वृत्ति बाबा कहते साधना की वृत्ति, तपस्या का वायुमंडल क्या करो? दादियां भी कहती हैं ये लहर फैलाओ ब्राह्मण परिवार के अंदर, सब तरफ हो। जैसे मम्मा डे आता है, 18 जनवरी आती है, छोटे मोटे हर सेवा केंद्र पर देखो तो क्या माहौल होता है, कौन सा एटमोस्फियर होता है। साइलेंस, योग, साधना, तपस्या, हर सेवा केंद्र पर एक समान वायुमंडल। और आप देखिए कि उस दिन योग में जब बैठते हैं तो सहज योग लगता है, अच्छा योग लगता है, एक माहौल क्रिएट, वायुमंडल तैयार हो जाता है उस दिन। तो वो वातावरण हमें मदद करता है, वृत्ति से वायुमंडल, और जैसे वायुमंडल में जाओ वैसी वृत्ति भी बन जाती है। कैसे एटमोस्फियर में गए हो वैसे सोच शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि जहां नेचर बहुत सुंदर, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, बहुत सुंदर पानी के झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही है, वो सीन देखो तो क्या मन की स्थिति होती है। लोग साइड सीन पर क्यों जाते हैं? मनोस्थिति को उस स्थान को देख करके बदलने के लिए। अभी हर समय तो हिल स्टेशन पर जा नहीं सकते हैं, इसलिए अभी लोगों ने क्या शुरू किया है, कि अपनी घर की दीवारों पर ऐसे ग्रीनरी के पोस्टर्स लगा देते हैं, ना? बहुत सुंदर गार्डन के बड़ी बड़ी पूरी दीवार भर देते हैं वो स्टिकर बड़ा चिपका करके, कि जब उसको देखे ना वो पता है कि ये वॉलपेपर है, लेकिन फिर भी वो सीन को देख करके व्यक्ति क्या होता है, कुछ परसेंटेज रिलैक्स। तो ये नेचर रिलैक्स करती है ना, वो माहौल, वो वायुमंडल हमारी मन की स्थिति को बदलता है। लेकिन बाबा ने कहा कि आप तो तपस्वी हो, योगी हो, साधक हो, आपकी योग की लगन की अग्नि इतनी तेज, इतनी प्रज्वलित है, जो बाबा ने कहा कि ये भ्रष्टाचार, अत्याचार की जो वृत्ति है उसको समाप्त करेगी। और दिन भर में भी आपके संपर्क में भी कोई आएगा तो आपका गुण भरे कर्म, आपकी वो रूहानियत, निस्वार्थ पालना, प्यार, उस आत्मा को कुछ न कुछ आपसे प्राप्ति जरूर करवाएगा। इसलिए बाबा ने कहा दाता की वृत्ति रखो, जो भी आए उनको मुझे कुछ न कुछ देना ही है, चाहे दृष्टि से दो, वाणी से दो, या तो वैसा वातावरण क्रिएट कर, वायुमंडल बनाकर उस आत्मा को मुझे देना ही है। क्योंकि स्नेह के सागर दाता के हम बच्चे हैं, और इसीलिए हमें वो रूहानी स्नेह की पालना आत्माओं की करनी ही है। और वो पवित्र प्यार उस आत्मा के संस्कारों को, वृत्ति को, उनकी हैबिट को क्या करेगा, बदल देगा। हम सब में परिवर्तन आया है, ये ईश्वरीय प्यार से ही तो आया है ना। देखो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी जब होती थी, इतना बड़ा हॉल, कितने लोग, लेकिन योग में जब बैठ जाते बिल्कुल इतने हजार होते हुए भी पता नहीं चलता था। वातावरण में स्थिरता, बिल्कुल शांति के जैसे बादल छा जाते हो, ऐसे पूरा वातावरण बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दिखते हैं नीमा श्याम का भी जो योग चलता है, चाहे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहां कोई कार्य से उस रोड से पास हो रहे हो तो भी वो वाइब्रेशन क्या करते हैं, खींचते हैं, वो पावरफुल, बोलते हैं आपकी योग की पावरफुल वृत्ति वो आत्माओं को चुंबक के तरह आकर्षित करेगी, प्रेरित करेगी वहां पर आने के लिए। बाबा ने कहा कि आपकी विश्व कल्याण की वृत्ति है, इसलिए ये आत्माएं आपके समीप, एक है बाबा ने कहा वाणी से सेवा, लेकिन वाणी के साथ साथ उसी घड़ी वैसी ही वृत्ति और वैसी ही वाणी, ये मैचिंग हो, कपड़े मैच पहनते हैं ना, मैचिंग चाहिए। तो ये हमारी वृत्ति जैसी हो वैसी ही वाणी हो, ये दोनों जब मैच होगी तो उस आत्मा को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, परम आत्मा के समीप उस आत्मा को लेके आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं दिन भर में भी अपनी वृत्ति को देखो कि शुभ भावनाओं से खूब भरपूर है ना, सारी आत्माओं के लिए, चाहे कोई कहां पर भी हो जहां पर भी हो, लेकिन उसके लिए मन में वो सुखी हो, शांत हो, उनके दुख दर्द उनसे मुक्त हो, शांति के प्रकंपन वाइब्रेशंस उस आत्मा को आपके मन में वो भाव, बाबा कहते हैं गोले को इमर्ज करो, सारे विश्व को खुद के सामने लाओ, और जब वृत्ति प्योर होगी और कल्याण का भाव हर आत्मा के प्रति भरा हुआ होगा, तो बाबा ने कहा आप सकाश देने की सेवा कर सकोगे। बाबा के जीवन का भी उदाहरण है, विश्व किशोर दादा थे, उनका बॉम्बे में ऑपरेशन था, तो बाबा रात को झांक करके भी वो सकाश लाइट माइट दे रहे थे, तो वहां उस आत्मा को वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा जब वृत्ति ऐसी होगी तब आप सकाश दे सकोगे, प्रकाश दे सकोगे, उसको शक्ति उन आत्मा के अंदर भर सकोगे। और ऐसी वृत्ति को, अब ये सारी बातें ले, जैसे विश्व कल्याण की बात ले, रूहानियत ले, पॉजिटिव वृत्ति रखे, शुभ भावना शुभ कामना, बेहद की वैराग वृत्ति, इस सारी वृत्तियों की बातें वो एक में समा जाती है, और वो कौन सी है, देवी वृत्ति। देवताओं में ये सारी चीजें थी, और इसलिए हमें अपनी वो देवी वृत्ति को जागृत करना है। जैसे देखो सतयुग में आदि में हमारी वृत्ति पवित्र थी, आत्मिक थी, एक दूसरे के प्रति स्नेह, जानवरों में भी आपस में प्यार था, शेर बकरी साथ में पानी पीते थे, तो देवताओं का आपस में कितना प्यार होगा, तो ये स्नेह भरी वृत्ति थी वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग, तो वो वृत्ति तो नीचे क्या है, दबी हुई है ना। और आप देखो जीवन में कि जो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल चीज होती है वो इधर उधर बाहर नहीं होती है, कहां होती है, अंदर 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 अंदर। बैंक में लॉकर कहां होता है ना, बैंक में एक अलग कमरा, उसके अंदर भी देखो तो दो चाबियां लगे तब ये खुले, ऐसे खुले भी नहीं। आप अपने घर में भी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे बाहर खुले रखते हो, कहां ना कहां तिजोरी में रखते हो, जो किसको पता भी ना लगे छुपा के रखते हो। ऐसे ये देवी संस्कार देवी वृत्ति हमारी ऑलरेडी है आत्मा में, बाबा ने कहा रिकॉर्डेड है। अब कौन सा गीत यहां बजाना है, भाई बजाते हैं ना, आजकल तो पेन ड्राइव में कितने एक साथ गीत भरे हुए होते, अब कौन सा बजाना है उसको बटन दबाओ, है ना। ऐसे हमारे भी देवी वृत्ति देवी संस्कार हमारे अंदर ऑलरेडी है, पाठ बजाया है ना वो, चाहे त्रेता के अंत में भी, लेकिन बजाया तो है, वो पड़े है ना वो संस्कार। अब उसको स्मृति से बाहर लाना है, अंदर अंदर चीज पड़ी है ना, उसको क्या करो, बाहर लाओ और उसको यूज करो। और बाहर कैसे लाएंगे, इमर्ज कैसे करेंगे, जिसके लिए बाबा हमें स्वमान का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। बार बार याद कर 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 के क्या होगा, अंदर से वो चीज ऊपर बाहर आएगी, उसको यूज करो। उस देवी संस्कारों को बाहर तो लाना होगा, इसलिए बाबा कहते हैं कई बार बच्चों के पुरुषार्थ को मैं देखता हूँ कि वो तमो से रजो तक पहुँचे हैं, रजो से सतो सामान्य तक पहुँचे हैं और उसके आगे सतो प्रधानता तक पहुँचे हैं। देखो सोना है, डायमंड है, उनकी खान होती है ना, अंदर 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 खोदना पड़ता है, उसको खोद काम करना पड़ता है, उसके बाद वो चीजें क्या होती है, बाहर आती है। इसलिए यज्ञ में भी बाबा ने शुरू में 14 वर्ष तक तपस्या करवाई। साधन तो थे तभी भी, जो दादी आई उनके घरों में भी सुविधा और साधन थे, बाबा के यज्ञ में भी साधन थे। उस जमाने में आज से 80 वर्ष पूर्व की बात देखें तो अपनी बिजेंद्रा दादी थी, वो बस चलाती थी। आज से 80 वर्ष पहले की बात, दादियां कहती थी बादाम और काजू बाबा खाने के लिए। साधन थे, सुविधा थी, लेकिन फिर भी बेहद की वैराग्य की वृत्ति ने तपस्या करवाई। और अभी तो ये दुनिया की हालत को देख ही रहे हैं, वैसे भी वैराग्य आए ऐसा ही है कि नहीं? अभी का एटमोस्फियर दुनिया का कैसा है? बाबा ने एक मूली में कहा है कि आप पहले खुद अपनी वृत्ति को बेहद के वैरागी नहीं बनाओगे तो समय वैराग दिलाएगा। और अब वो समय दिखाई देता है ना, इसलिए इस दुनिया में रखा ही क्या है। और ये वैराग हमारी साधना, हमारी तपस्या को, दादियां कहती थी घंटों घंटों हम बैठे रहते थे बाबा की याद में। ऐसी तपस्या के द्वारा हमारे अंदर अंदर गहराई में दीप योग का अनुभव वो देवी संस्कारों को क्या करेगा, इमर्ज करेगा। और वो इमर्ज होंगे तो नेचुरल होगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो साधना द्वारा उन संस्कारों को बाहर लाएं, खूब स्मृति में लाओ, सिमरन करो। भक्ति में नाम स्मरण करते थे हम, अपने देवी वृत्ति देवी संस्कारों का सिमरन करें। और इसलिए कहा सिमर सिमर सुख पाओ, भक्ति में तो भगवान का नाम सिमर के सुख। यहाँ बाबा की याद हमारे खुद के देवी संस्कारों का सिमरन करो, जो योग में बैठ के कहते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, मैं शांति की सागर की संतान हूँ। ये शांति को बार 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 अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, सिमरन। और सिमरन करते 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 क्या हो जाता है, शांति को बाहर लाया ना, अंदर पड़ी है, गले का हार है। कई बार कोई चीज याद नहीं आती, नहीं याद करो याद करो, कहते हाँ हाँ अभी याद आ गया मेरे को। सी हमारी खुद की चीज है, उसको सिमरन से, चिंतन से, जो बहुत डेप्थ में चली गई है। और इम्पोर्टेंट चीजें तो होती है, समुद्र में भी कीमती मोती वो अंदर होते हैं, है ना, वो छिपले हैं, वो तो बाहर होते हैं, पानी के बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोती के लिए तो अंदर जाना पड़ता है। तो तपस्या कर अंतर्मुखी होकर हम अपने निजी संस्कारों के तरफ अंदर डेप्थ में जाएंगे तो वो चीजें क्या होगी, इमर्ज। क्यों हम कहते हैं कि योग में जब बैठे साइलेंस में, बाकी सब जगह से हमने अपने ध्यान को हटाया, अपने अंदर केंद्रित किया, बाबा में ध्यान लगाया, तो शांति की अनुभूति होने लगी। क्यों होने लगी? शांत हो गए, प्रेम के झरने अंदर में बहने लगे, बहुत प्यार उमड़ उमड़ के आने लगा। ये अनुभूति होती है ना योग में, इसलिए बाबा कहते हैं बार बार तपस्या करो, उसके द्वारा स्वयं की वृत्ति का भी परिवर्तन। और योग में बैठे हो तो देखो उस कमरे का वातावरण भी, वायुमंडल भी चेंज हो जाता है। मुझे याद है बॉम्बे में पहले पहले गुजारदारी का ऑपरेशन हुआ था, हम मिलने गए थे, अंदर दरवाजा खुला है हॉस्पिटल का कमरा, लेकिन कुछ दिन दादी वहां थी तो वहां का वायुमंडल अलग ही लगता था, लगता ही नहीं था कि हम हॉस्पिटल में गए। लेकिन क्या चार्ज, क्या प्योर वाइब्रेशन, दादी बैठी थी तो लगता था कि अरे कोई योगी यहां बैठा है, ऐसे शीतल और ऐसे वाइब्रेशन, इतना अच्छा लगता था। तो जहां योगी हो, तपस्वी हो, वहां का वातावरण वायुमंडल चेंज। और अभी बाबा कहते हैं ये तीव्र गति की सेवा है, जहां हम रहें वहां के वाइब्रेशन को चेंज, वायुमंडल को चेंज करो, जिससे ऑटोमेटिकली औरों के वाइब्रेशन आएंगे और उनमें परिवर्तन करने की प्रेरणा ये जागृत होगी। ओम शांति।
Yeah.